इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। ओ वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवनो। अपनी करुणा की जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
मैनेजिंग अनसर्टनिटीज, अनिश्चितताओं का कैसे हम प्रबंधन करेंगे। अनिश्चितता आज की हमारी पहचान है, कब क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, अचानक होगा या बोल के होगा, हमें पता नहीं है। और खास करके बिजनेस और इंडस्ट्री वालों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है कि कल से क्या होगा। तो इस विषय का विश्लेषण फुल्ली टेक्निकली, फुल्ली स्पिरिचुअली और आनंद प्रमोद के साथ में करने के लिए हमारे साथ में है हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी, और जिन्हें हम प्रेम भाई करके बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उनका पहले हम एक हाथ की ताली से अभिवादन करेंगे। डॉक्टर प्रेम भाई का एक बहुत ही अच्छा एम ऑब्जेक्टिव है कि एम्पावर योर सेल्फ, खुश रहो, खुशी बांटो, आनंद में रहो, आनंद बांटो। और ये करने के लिए उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ में ये एक बहुत ही मैनेजमेंट ट्रेनर का रूप अपना लिया है। वे हमारे बिजनेस इंडस्ट्री विंग के, हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था के बहुत ही प्रखर वक्ता भी नहीं है, लेकिन साथ साथ में मैनेजमेंट ट्रेनर है। हमारी बहनों को आगे करने के लिए, उनको लौकिक से जोड़ने के लिए वो काफी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। प्रोफेशनली वो अपने आप में एमडी डॉक्टर है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है। वो अमेरिका में 15 साल रह चुके हैं और वर्तमान समय हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर्स की जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर में अपनी ऑनररी कंसल्टेंट के नाते सेवा दे रहे हैं। इंडियन कॉरपोरेट्स में सभी जगह उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रखर स्केड्यूल से उनको हमेशा न्योता रहता है और उसके अलावा विदेश के कई देशों में उन्हें भ्रमण किया है। तो प्रेम भाई आज हमें बताएंगे मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज और उसके बारे में उसकी गुत्थी।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। एक शब्द इस बार यूज किया गया, मेटामॉर्फोसिस। ये बायोलॉजिकल शब्द है और इसका अर्थ रहता है हम कैसे अपने अंदर वो चेंजेस लाएं जिससे हमारी ग्रोथ नेचुरल हो। अनसर्टेनिटी विश्व का, मनुष्य जीवन का एक नियम है। मेरे ख्याल से सर्टेनिटी जीवन में कुछ नहीं है, केवल अनसर्टेनिटी है। और उस अनसर्टेनिटी में हमारे पास केवल एक रहता है, हम कैसे इसको मैनेज करें, ठीक रखें। शायद परमात्मा ने भी हमें कोई ऐसा मेथड नहीं दिया है कि अनसर्टेनिटी होए नहीं। अनसर्टेनिटी हमारे लाइफ का पार्ट है, इसको हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और हम सभी ने देखा अलग अलग समय तरह तरह के प्रॉब्लम विश्व में आए पिछले 5 सालों में, और उन 5 सालों में हमने देखा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जापान का था जिसमें रेडिएशन, सुनामी, अर्थक्वेक तीनों एक साथ हुए और तीनों का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा कंट्री को फेस करना पड़ा। पर उस अनसर्टेनिटी में भी वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोगों ने उसको अच्छी तरह हैंडल किया और अपने एंड्यूरेंस से, कैपेसिटी से उसको ठीक किया। तीनों प्रॉब्लम के बीच में रहते हुए भी कंट्री बैक टू नॉर्मल आ गया क्योंकि उस कंट्री में एंड्यूरेंस कैपेसिटी बहुत है। शब्द यूज किया मॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक बटरफ्लाई एग्स देती है और फिर जाकर कैटरपिलर में कन्वर्ट होती है और वो कैटरपिलर फिर बटरफ्लाई बनती है। अगर कैटरपिलर को बीच में रोक दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो कैटरपिलर खत्म हो जाता है। कैटरपिलर अपनी शक्ति से अपनी मेम्ब्रेन को बाहर की तोड़कर बाहर आता है और बटरफ्लाई बन जाता है। इसी तरह से पूरा ये बायोलॉजिकल प्रोसेस तरह तरह के एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में भी होता रहता है। यहां से यहां की प्रोसेस को जो अगर देखें, वो एक शक्तिशाली प्रोसेस होती है और उस शक्तिशाली प्रोसेस में उसको तरह तरह के परिवर्तन से सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने के लिए मेटामॉर्फोसिस को क्रॉस करना पड़ता है, परिवर्तन क्रॉस करना पड़ता है। कल ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा फ्रंट पेज पर था, मिस्टर नरेंद्र रावल केन्या में है, एक ग्रुप के चेयरमैन है। उनकी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कैसे वो अहमदाबाद से 37 इयर्स बैक गए केन्या में, जीरो से एज ए प्रीस्ट गए, स्वामीनारायण के प्रीस्ट थे, फिर उन्होंने जॉब लिया, अपना बिजनेस चालू किया और धीरे धीरे बिजनेस को चालू करते करते स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया। आज उनके पास जो वेल्थ है वो मोर देन 450 में नेटवर्थ है, 5650 मिलियन डॉलर्स, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वहां के, और उनको तरह तरह के अवार्ड भी मिले। उनका जो मेन फंडा मेरे को अच्छा लगा कि बिजनेस का अर्थ ये नहीं है कि केवल मैं अपने लिए कमाऊं, वेल्थ को जब तक हम एक ट्रस्ट के रूप में गुजारते नहीं है, बिताते नहीं है, होल सोसाइटी के लिए फायदा नहीं देते, तो वो बिजनेस भी कुछ काम का नहीं रहता। तो ये एक मेटामॉर्फोसिस है, कैसे पूरे साइकिल को उन्होंने ठंडे दिल से स्टेप बाय स्टेप पूरा करते गए और एक लेवल तक पहुंच गए। पीटर ड्रकर भी एक मैनेजमेंट गुरु रहे, बिजनेस के जाने माने ट्रेनर रहे, कई किताबें लिखी। उन्होंने भी कहा कि इफेक्टिवनेस हमें लाना पड़ता है लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है तो हमें पहले अपने अंदर इफेक्टिवनेस को लाना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस का अर्थ है डूइंग द राइट थिंग। पहले से अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तब जाकर हम अनसर्टेन सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। पहले से अगर इसको ट्रेन नहीं करेंगे, सिचुएशन एकदम आएगी तो हम उस समय उसको हैंडल नहीं कर पाते, और उस समय प्रॉब्लम क्या आता है, उस समय मेजर प्रॉब्लम आता है हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका डिस्टर्बेंस आ जाता है, और उस सॉफ्टवेयर के डिस्टर्बेंस से हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए पहली बात है हम अपने को ट्रेन करें। दूसरी थ्योरी एक बहुत अच्छा जैक वॉल्श लाया था, जनरल इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बड़ा सीईओ रहा अपने समय में, कंपनी को जीरो से ये भी टॉप पर ले गया, ऑलमोस्ट 410 बिलियन डॉलर्स कंपनी की वर्थ को बनाया। जो कंपनी की वैल्यू 14 बिलियन थी, जैसे ही सीईओ बना उसकी वैल्यू को 410 बिलियन तक ले गया। उसका भी एक बहुत अच्छा अप्रोच था और वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सीईओ बना। कई किताबें लिखी, कई थ्योरीज आई, और उसमें मेजर इसकी थ्योरी जो मुझे अच्छी लगी, जो नेगेटिव एरिया है हम उसको खत्म करें। होता क्या है बिजनेस में, हम चलते रहते हैं और कभी ये नहीं देख पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं मेरा कौन सा ऐसा एरिया है जो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, चाहे बिजनेस में चाहे मेरे अंदर, और अगर दोनों को मैं करेक्ट करता हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ती है। जैक वॉल्श की थ्योरी यही थी कि वो एरिया को बंद कर दो जो ठीक नहीं है, चाहे मेरे अंदर भी मेरी पर्सनालिटी में जो एरिया ठीक नहीं है उसको मेरे को ठीक करना है तो मेरी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। खेल जो लाइफ का पूरा हो रहा है वो केवल एक फैक्टर पर है, एनर्जी लेवल। अगर मेरी एनर्जी लेवल अच्छी है तो मेरे डिसीजन अच्छे होंगे, मैं सिचुएशन को परख लूंगा, पावर टू जज रहेगा और मैं उसको हैंडल ठीक से करूंगा। अभी कुछ प्रॉब्लम जो पिछले 6 महीनों में आए उसका भी एनालिसिस अगर करें, अभी भी जो राजमंडी आंध्रा में प्रॉब्लम आया और सडनली कई डेथ हो गई, उसका भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं वो भाग जो प्रॉब्लम आया, रैम्पेड आया, तो उसके कारण लोगों में एकदम डर आया और भागने लगे, और जब डर आता है, पैनिकी होती है, तो हमारा डिसीजन पावर ठीक नहीं होता है और उसी को हमें ठीक करना पड़ता है। इसीलिए हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है मेरे को अपने अंदर परिवर्तन जो लाना है एट कॉन्शियस लेवल लाना है, न कि मेरी परिवर्तन बाहरी हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, वो ठीक है, पर सबसे बड़ा परिवर्तन आता है जब हम कॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। कॉन्शियस लेवल का अर्थ है मैं क्यों आया हूं और मेरे को अपने बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, मेरा मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। इसीलिए आज का फर्स्ट लेसन जो आप लोगों ने सुबह सुना, पहला लेसन ये सिखा रहा था कि मैं आत्मा यहां पर एक मिशन लेकर आई हूं, एक पर्पस है। और जब मिशन रहता है, पर्पस रहता है, तो एनर्जी रहती है। अगर पर्पस और मिशन नहीं है, केवल एक्सटर्नल में काम कर रहा हूं, आई विल बी जस्ट लाइक ए मशीन। और मशीन केवल एक बिना इमोशन के काम करेगी तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। और इसीलिए डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है। मेडिकल साइंस में हार्ट डिजीज के बाद, डायबिटीज टाइप 2 के बाद, कैंसर के बाद अब प्रॉब्लम आ रहा है, तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको लेबल किया डिप्रेशन। शायद अगर यही आगे रहा तो हम लोग केवल एक मशीन जैसा नहीं रह जाएं, कोई खुशी हमारे ऊपर नहीं रहे, तो एक जॉब हमारा एक्सटर्नल होगा। पर हम सब ह्यूमन बींग हैं, हमारे अंदर खुशी है, एनर्जी है। वो तब आएगी जब मैं सोचूंगा मेरे को क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छी बात बताई नरेंद्र रावल ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि हम लोग ट्रस्टी हैं और पूरे यूनिवर्स में हमारा हिस्सा है और हर आत्मा का यूनिवर्स में हिस्सा है। जितनी भी पॉपुलेशन है, हर आत्मा का कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है। हम उसके हिस्से को अगर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर मैं सोचता हूं केवल मैं ही ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेस आता है, बीमारियां आती है। लाइफ में अगर देखें दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर चीज अच्छी तरह शुरू होए और अच्छी तरह खत्म होए। पहले कहानियां हम सब सुनते थे बचपन में, राजा था, रानी थी, बच्चा था, बड़ा हुआ, शादी हुई, अच्छी तरह रहे। अब इस 2015 में ऐसा नहीं होता। हर चीज का बिगिनिंग कुछ भी हो, जन्म कुछ भी हो, पर मुझे आगे बढ़ना है। इसीलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, माइंड और मैटर। माइंड और मैटर के ऊपर ही पूरा गेम चल रहा है और जितने भी प्रॉब्लम हैं वो दोनों से कनेक्टेड है, माइंड और मैटर से कनेक्टेड है। इसीलिए कहा, इफ यू डोंट माइंड इट डज नॉट मैटर। अगर किसी चीज को हम अपने मन से नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहता। प्रॉब्लम तब होता है जब हम उसको मन से लगा देते हैं और वही प्रॉब्लम हम लेकर जीते रहते हैं और उसी का स्ट्रेस हमारे अंदर रहता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने देखा, वी नीड एवरीथिंग परमानेंट इन ए टेम्पररी वर्ल्ड। हम सब क्या चाहते हैं, हर चीज परमानेंट हो, पर हम सब जानते हैं ये परमानेंट कुछ नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे अंदर प्रीपेड कार्ड डाल दिया गया है और जितना उसका चार्जिंग होगा उतना चलता है। कोई कुछ भी कर ले, सेव करने के लिए होता नहीं है। इसमें हमें गारंटी मिल जाती है कंप्यूटर पर, इसमें गारंटी मिलती है 1 साल 2 साल, पर इसकी गारंटी परमात्मा भी नहीं देता है। तो हर चीज यहां टेम्पररी है, पर हम सोचते हैं परमानेंट हो। और हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं हमारे दो ही डायलॉग रहते हैं, अच्छा है, कितना चलेगा, कितनी गारंटी है। और हम सब जानते हैं टेक्निकल का कोई गारंटी नहीं रहती। और इसी तरह से हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को भी गारंटी नहीं रहती। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है, दौलत कमाने के लिए हम सेहत को खो देते हैं, फिर सेहत को वापस लाने के लिए दौलत को खो देते हैं, जीते ऐसे हैं कि कभी मरेंगे नहीं और मर ऐसे जाते हैं कि कभी जिंदा ही नहीं रहे। तो क्या करना है हमें, जितना समय दिया गया है अच्छी तरह जीना है, जितना मेरे अंदर कार्ड में डला हुआ है उसको अच्छी तरह चैनलाइज करना है। हाँ खड़े हो जाएं, चलिए खड़े हो जाओ, भाग मिल कब
ठंडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, तू भाग मिल खा, ओ बस तू भाग मिल खा, भाग मिल खा, भाग 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 मिल खा।
तो जब तक जीना है, जितना जीना है फुल एनर्जी से जीना है। जो है उसको लेकर मेरे को आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छा अभी लेटेस्ट आया, ईरा सिंगल फर्स्ट यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया 2014 में। स्कोलियोसिस है, ऑलमोस्ट 50-60% स्कोलियोसिस है, फिर भी एग्जाम में टॉप किया, क्योंकि जीने की, आगे बढ़ने की, मेटामॉर्फोसिस करने की इच्छा शक्ति थी। और वो मेटामॉर्फोसिस अगर अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दो ही चीजें हमारे सामने हैं लाइफ में, या तो भागो या भाग लो, पार्टिसिपेट और रन अवे। दो ही चॉइस रहती है लाइफ में, तीसरी चॉइस नहीं रहती है। अगर तीसरी लेनी है तो वो बड़ी प्रॉब्लम वाली रहती है, और तीसरी हो रही है आजकल, खड़े हो जाओ, फ्रीज, फाइट फ्लाइट और फ्रीज। फ्रीज का अर्थ है ना मैं भागूंगा, ना पार्टिसिपेट करूंगा, खड़े हो जाऊंगा। और उसी को हम लोगों ने नाम दिया डिप्रेशन। डिप्रेशन का और कुछ अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि मैंने जीवन से भागना शुरू किया। और अगर वो मेरे अंदर शक्ति है तो मैं लाइफ को सेलिब्रेट करूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। पार्टिसिपेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, डीएनए बॉडी का इंपॉर्टेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रहता है। डीएनए का अर्थ है मैनेजिंग द अनएक्सपेक्टेड। अगर मेरा डीएनए ठीक काम कर रहा है तो कोई भी अनसर्टेनिटी को मैं अच्छी तरह फेस कर सकता। डीएनए का अर्थ है डेवलप न्यू अवेयरनेस, डेवलप न्यू अवेयरनेस। अब घूम फिर कर गेम आ रहा है, जितना लिटरेचर आ रहा है वो सब एक चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, इसका अर्थ है मेरी अवेयरनेस काम कर रही कि नहीं कर रही। मैं अगर अवेयर हूं तो कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगर अवेयर नहीं हूं तो प्रॉब्लम आएंगे। अवेयरनेस का अर्थ है मेरा मन और बुद्धि इस समय यहां पर है। आज आपने पहला लेसन समझा और उसमें देखा ट्रायंगल है माइंड इंटेलेक्ट सबकॉन्शियस MIS, माइंड इंटेलेक्ट सबकॉन्शियस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। मेरा सॉफ्टवेयर मेरे अंदर काम कर रहा है और मेरा हार्डवेयर प्रोडक्टिविटी दे रहा है। बॉडी प्रोडक्टिविटी मशीन है, प्रोडक्टिविटी देता है। जो यहां हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन यहां आ रहा है। यहां कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, इसका कारण है कहीं ना कहीं मेरा सॉफ्टवेयर कंफ्यूजन में है, कंफ्लिक्ट है। दवाई ले रहा हूं पर रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है उस कंफ्लिक्ट को ठीक करना। ये अब अच्छी स्टडीज आ गई हैं कि हमारे इमोशंस टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अभी तक हमें मालूम था डाइट टॉक्सिन पैदा करती है, एनवायरमेंट टॉक्सिन पैदा करते हैं, अब लेटेस्ट आया है इमोशन भी हमारे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। खाना खा रहा हूं और उस समय गुस्से में हूं, चिंता में हूं, स्ट्रेस में हूं, मेरा डाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा, और जब डाइजेशन ब्लॉक होगा तो ज्यादा देर खाना रुका रहेगा, और वो रुका रहेगा तो टॉक्सिन पैदा करेंगे। इसीलिए डीएनए का अर्थ है मैं अपने मन और बुद्धि को बार बार इस समय यहां पर ले आ रहा हूं, इस समय मुझे क्या करना है। अगर ये मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो गई, इस समय मेरे को क्या करना है, तो मेरा पूरा फोकस इस समय मेरे ऊपर रहेगा, और अगर फोकस रहेगा तो डिसीजन अच्छा होगा। फोकस नहीं है, मैंने मल्टीपल फाइल्स खोल रखी हैं, प्रॉब्लम आएगा। ऑफिस के कंफ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के कंफ्लिक्ट कहां से आते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो कंफ्लिक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरा मन कहीं और भाग रहा है। इसीलिए मेन गेम है बार बार मन को इस समय यहां पर ले आओ। मन भाग रहा है, चिंता दे रहा है, डरा रहा है, मैंने मन को कहा इस समय मैं यहां पर हूं, हे मन इस समय मैं यहां पर हूं। जैसे ही मन यहां पर आएगा वो डराना कम कर देगा। जो घबराहट मेरे में आ रही थी इंटरव्यू देने की वो कम हो गई। कल भी मेरे को एक सिंगर मिला, वो सिंगर कहता है जब सॉन्ग मैं शुरू करता हूं मेरे को अंदर बहुत घबराहट आती है। उसका कारण है कि वो रिजल्ट चाहता है उसके अनुसार, और वो देख रहा है कि इसका क्या होगा। वो दोनों को कंट्रोल कर लिया और फिर गाना गाया या जो इंटरव्यू देना है दिया, तो वो डर और घबराहट नहीं रहेगी। यही लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुना को बोला, इस समय तेरा काम है युद्ध लड़ना, वो तेरे हाथ में है, बाकी तेरे हाथ में नहीं है। क्या होगा युद्ध का हमें नहीं पता, रिजल्ट क्या होगा पता नहीं है, पर तेरा काम है युद्ध को लड़ना। तो जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर घबराहट ला रहा है, मेरे को सॉफ्टवेयर को चार्ज करना पड़ेगा। मैंने चार शब्द दिए हैं TEAM, और सिंपल करके दे रहा हूं, हमारा सॉफ्टवेयर थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी, ये चार शब्द हमारे को पूरे लाइफ का गेम खिलाते हैं। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, ये चारों अगर ठीक रीति काम करते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ जाते हैं। इमोशन क्या करता है, इमोशन थॉट्स को कभी कभी कंट्रोल कर लेता है, और उसके कारण हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। हमारे थॉट्स इमोशन को कंट्रोल करें, इमोशन थॉट्स को कंट्रोल नहीं करें। अभी का मेजर प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं देख रहा हूं, लोगों के इमोशन उनकी थिंकिंग को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके कारण उनका अंदर का सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो जाता है। इमोशन को अलग हटाकर हमें थॉट्स को लेकर सोचना पड़ता है, इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है, क्योंकि इमोशन हमें डराते भी हैं और एनर्जी भी देते हैं। अब अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा ह्यूमन का नेचर है। अनसर्टेनिटी एक डर पैदा करता है, और मैं कहूं सबसे बड़ा स्ट्रेस, तनाव का कारण भी हमारे साथ होता है, क्या होगा, क्या होगा, और इसी के कारण हम तरह तरह के बिहेवियर पैटर्न करते हैं। पूरा बिहेवियर डिपेंड करता है मेरे अंदर सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है। मैं देख रहा था अभी ज्यादातर लोग, मैं भी कभी कभी कॉट अप हो रहा था उसमें और फिर मैंने करेक्ट किया। ज्यादातर लोग अभी बातें कर रहे हैं यहां पर और उन जगह पर जहां पानी नहीं गिर रहा है, बरसात हो ही नहीं रही है, बरसात हो ही नहीं रही है। फिर मैंने देखा ये भी गलत है, पानी नहीं गिर रहा है, फोन आया यहां भी नहीं गिर रहा है, तो क्या कह रहा हूं मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूं, मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूं, पानी नहीं गिरना, नहीं शब्द गया कॉस्मोस में, यूनिवर्स में, और वो कह रहा है पानी नहीं गिरना। अब उसका सलूशन मेरे को भी लगा मैं भी गलत कर रहा हूं। फिर मैंने कहा पानी समय पर आएगा और आएगा। अब उस नेगेटिव वर्ड को हटाकर करेक्ट किया, कोई बात नहीं पानी आएगा। तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी जब तक वो गिरे नहीं, और ये सबसे बड़ा डर मनुष्य को खाता है और उसी को ठीक करना पड़ता है हमें अपने अंदर। और जो टर्मिनोलॉजी यूज की है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का अर्थ है मैं अपने थॉट्स का मालिक हूं, मेरे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उनका मैं कंट्रोलर हूं, थॉट्स मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हूं। इस समय कौन सा थॉट चाहिए वो मेरे हाथ में है, अगर थॉट्स मेरे को पकड़ के ले जाएंगे तो फिर वही होगा जो थॉट्स पैदा कर रहे हैं। तो एम्पावरमेंट का अर्थ है कि मैं अपने विचारों का, थॉट्स का कंट्रोलर हूं, और हमारे थॉट्स ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारे थॉट्स ही पूरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वही मेरी भाग्य है। मेरा हर संकल्प बाहर जा रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेरा हर संकल्प जो बाहर जा रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं उस दिन, दो दिन पहले NDTV पर एक इंटरव्यू देख रहा था कैंसर के ऊपर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का इंटरव्यू था और डॉक्टर रथ उसमें आंसर दे रहे थे। डिस्कशन में ये निकला जैसे ही शब्द कैंसर आ जाता है आदमी डर जाता है। उसमें डॉक्टर रथ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर मेजॉरिटी क्यूरेबल है अगर अर्ली स्टेज पर आए। हमारे देश का प्रॉब्लम है हम अर्ली स्टेज पर कैंसर को ला नहीं सकते, ला नहीं पाते, क्योंकि तरह तरह के डर बने हुए हैं। बाहर के देश में वो अर्ली स्टेज पर आते हैं और क्योर हो जाते हैं, और हमारे यहाँ लेट स्टेज पर आते हैं और क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं। उस शब्द को भी अगर हम यहां से हटाकर सोचें, वो भी एक बीमारी है, उसको मैं ठीक कर सकता हूं, पर उसको मैं बार बार कह रहा हूं ठीक नहीं होगी, ऐसा ही होगा, तो वो बीमारी वैसा ही रिजल्ट देगी। तो इसीलिए उस अनसर्टेनिटी को ठीक कर लिया, मेरी बीमारी ठीक है, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, तो बीमारी ठीक होगी। लोग क्यों नहीं ठीक होते हैं? दवाइयां काम करती है, मेडिसिन काम करता है, डॉक्टर काम करता है, पर सबसे बड़ी चीज है वो पेशेंट खुद क्या सोच रहा है। 60% वो काम करता है, बाकी 40% काम करता है। इसीलिए जब हम दवाई लें उस पर हम थोड़ा फेथ रखें, और फेथ रखकर दवाई लें। अगर फेथ नहीं है तो दवाई नहीं लें। अभी 2 दिन पहले एक बहन आई, डायबिटीज ओरल मेडिसिन ले रही है, उसकी शुगर बढ़ी, डॉक्टर ने इंसुलिन दिया छोटा डोज। दूसरे दिन मैंने देखा वो बार बार रिपीट कर रही थी कि मेरे को इंसुलिन क्यों दिया। अब मैं देख रहा था उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ नहीं था जितना उसका अपना स्ट्रेस लेवल ज्यादा था। अब ये इंसुलिन मेरे पैनक्रियाज को ब्लॉक कर देगी। अब वो क्या कह रही है, क्या कह रही है, खुद ही कह रही है मेरे पैनक्रियाज को वो ब्लॉक कर देगी। तो वो नेगेटिव बिलीफ को हमें हटाना पड़ता है, तब हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारा भाग्य हमारे अंदर ही है। अब जो अनसर्टेनिटी हो रही है उसका कारण भी मेरे संकल्प हैं। मैं किस सिचुएशन में फंस रहा हूं, कहां ट्रैप हो रहा हूं, उसका कारण भी मेरे थॉट्स हैं। ये देखा गया जो लोग फ्लाइट में बैठते हैं और फ्लाइट में बैठने वालों का संकल्प सबका पॉजिटिव है तो फ्लाइट लैंड ठीक होगी। फ्लाइट में बैठने वालों का अगर 40-50 का संकल्प नेगेटिव है, क्या होगा, कहीं गायब तो नहीं हो जाएगी, वो मलेशियन एयरलाइन का ऐसा ही हुआ था। तो 40 ने क्या किया, 40 ने क्रिटिकल मास क्रिएट किया। इसको फिजिक्स में कहते हैं क्रिटिकल मास नंबर। और जैसे ही 40 का संकल्प हुआ, थॉट्स क्रिएट हुए, फ्लाइट का कुछ होगा तो वो फिर कुछ होगा। वो 40 का थॉट्स दूसरों में भी जाएगा और उसमें भी नेगेटिव संकल्प क्रिएट करेगा। इसीलिए कभी कभी मेरे पास एक माता आई, एक बहन आई यंग, वो कहती है जब कभी मैं सोचती हूं सुसाइड कर लूं, 1000 थॉट्स और आ जाते हैं, कल ले। वो पूछ रही थी कहां से आ रहे हैं, क्योंकि उसका थॉट गया और जिनके अंदर चल रहा था उन्होंने भी उसको रीइंफोर्स किया, कर ले। इसीलिए कभी भी जैसे ही एंट्री मारे उसको वहीं रोक लो, उस थॉट को आगे बढ़ने नहीं दो। तो हमारे थॉट्स हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। 3 चीजें चाहिए किसी भी अनसर्टेनिटी को फेस करना है, रीजन, पैशन और गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ है, यह आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आजकल सिचुएशन बोल कर नहीं आ रही है, कभी भी आ रही है, उस स्थिति में मेरे हाथ में केवल एक चीज रहती है, मेरे अंदर का इंट्यूशन क्या कह रहा है। अगर मेरा इंट्यूशन अच्छी तरह काम कर रहा है, कह रहा है ये कर, तो उस स्थिति से बच जाते हैं। गट फीलिंग का अर्थ है हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो बॉडी का बहुत अच्छा सिग्नल देती है। जब कभी भी मैं सोचता हूं, डिसीशन लेता हूं, वो अंदर जाता है। और सबसे अच्छी जगह है हमारी इंटेस्टाइन। मैं हमेशा सोचता हूं हमारी इंटेस्टाइन सेकंड हार्ट है, सेकंड ब्रेन है। वो सिग्नल देती है कि तेरा डिसीशन ठीक है कि नहीं है। मैंने सोचा और यहां मैं कंफर्टेबल हूं, अच्छा लग रहा है और हार्ट बीट नॉर्मल है, इसका अर्थ है जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक है। अगर यहां मेरे को टाइट लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इसका अर्थ है फिर से सोच ले। बच्चे हमेशा कहते हैं जब स्कूल का काम नहीं करते तो बच्चे क्या कहते हैं, पेट में दर्द हो रहा है। क्यों कहते हैं? हम सोचते हैं वो झूठ बोल रहा है, पर वो रियल है। जब कभी भी उसको फियर आता है, मैं काम नहीं कर रहा हूं, स्कूल का डर ट्रांसमिट हुआ और पेट में दर्द शुरू हुआ। फियर हमेशा हमारे सिस्टम को सप्रेस करता है। इसीलिए कहा जा रहा है आज की दुनिया में क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बनना है। जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना डर नहीं होगा और हम अच्छी तरह जी पाएंगे। जैसे ही कोई चीज हमने करी, मेरा कॉन्शियस खा रहा है, यहां प्रॉब्लम आएगा और इसीलिए टॉक्सिन पैदा होंगे और बीमारी शुरू होगी। मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी, रियल वर्शन याद आया। श्री धीरूभाई अंबानी एक अर्जेंट मीटिंग में कार से जा रहे थे, तूफान आने लगा, ड्राइवर ने पूछा रोक लूं? बोला नहीं, चलते रहो। गाड़ी आगे बढ़ी और तूफान तेज हुआ, फिर पूछा, बोला नहीं चलते रहो। आगे गए, देखा गाड़ियां रुकी हुई हैं, काफी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम है। फिर पूछा रुक लूं? बोला नहीं चलते रहो। जैसे तैसे उसने आगे बढ़ाया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा पूरा तूफान थमा हुआ था और आकाश क्लियर था। फिर उन्होंने कहा अब रोक लो, अब बाहर आओ। बोला आपने पहले नहीं बोला और अब बोल रहे हैं जब पूरा क्लियर है। बोला कि उस समय अगर रोकता तो हम भी कहीं ना कहीं अभी तक फंसे रहते। मेरा इंट्यूशन जो कह रहा था वो उससे गाइड होकर मैं तेरे को कह रहा था चलते रहो। कभी कभी हमारे अंदर का इंट्यूशन हमें गाइड करता है, और जो रुक गए वो रुक गए और जो आगे चले गए वो आगे चले गए। तो डिसीजन हमारा आज के समय में, मैं भी सोचता हूं, मैं अपना भी लेता हूं, इंट्यूशन के ऊपर रहता है। थिंकिंग करता हूं क्या होगा, पर फाइनल डिसीजन तब लेता हूं जब मेरा गट फीलिंग कह रहा है कर दे। और ज्यादातर मैंने देखा वो गट फीलिंग करेक्ट गाइड करती है, क्योंकि उसके सिवाय और कोई गाइडेंस हमें नहीं मिलता उस प्रॉब्लम में। फिर खड़े हो जाएं, चलिए खड़े हो जाएं। आ रहे हो? ये मत कहो खुदा से, ये बहुत अच्छा गाना है। अगर कुछ नहीं समझ में आए उसको कहो मेरे को गाइड करे। जब हम सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इंट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, फिर क्या करूं? लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? तो मैंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का अर्थ है सर अंडर। मैंने सर अंडर कर दिया तो ऊपर वाला काम शुरू कर देता है। जब उसको दे देते हैं वो शुरू करेगा। चलिए
मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे कढ़ा है। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
वेरी गुड। अब दोनों चीजें चाहिए, जैसे ब्रेन में भी लॉजिकल ब्रेन है और हमारा इमोशनल साइड है। हमें नॉलेज मास्टर जरूर बनना है, स्किल्स सीखना है, पर स्किल्स के साथ जो समझ है उसको कैसे यूज करना है उसके लिए चाहिए हमें विजडम। नॉलेज मास्टर के साथ विजडम मास्टर बनेंगे तब हम किसी भी अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग आप यहां लेने आए हैं, बिजनेस विंग ने फिक्स की है, उस ट्रेनिंग का भी प्रिंसिपल है कि कैसे हम अंदर के उन वैल्यूज को, पावर्स को एक्टिवेट करें। हरेक के अंदर वो है पर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसका बार बार यूज करना पड़ता है, तब हमारे अंदर वो विजडम आती है कि परिस्थिति के अनुसार क्या करना है। हर परिस्थिति को समझकर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आज के लीडर का मेन काम है, लीडरशिप का क्या मेन काम है? एक अच्छा लीडर कौन है बताइए। आज के समय को देखते हुए एक अच्छा लीडर कौन है? लीडर ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, पॉलिटिकल का, कहीं का भी, एक अच्छे लीडर की क्या निशानी है? लिसनर, टीम को साथ लेकर चले, और टीम का हो गया, हमेशा पॉजिटिव सोचे, और हाँ परिस्थितियों के अनुसार क्या करना है, इस परिस्थिति में कौन बेटर है मेरे से, गुड ह्यूमन, क्विक डिसीशन, जो सर ने बताया सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है खुद करे और दूसरों को करने दे। वेरी गुड। पर जो मैं आ रहा था पॉइंट पर, सिचुएशन बदल रही है, किस सिचुएशन में कौन सा व्यक्ति बेटर हैंडल कर सकता उसको आगे कर दे और खुद पीछे हो जाए। आजकल सिचुएशन, अभी आने वाला समय हम सभी ने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया डिजिटल होगा। अब डिजिटल इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले हमने देखा शॉपिंग लोग दुकानों पर करते थे, ठेला वाला आता था, फिर मॉल आ गए, फिर मल्टीप्लेक्स आ गए,
तरह तरह की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, डिमांड बढ़ते गए और हमारा अप्रोच बदलता गया बिजनेस में। अब देख रहे हैं ई शॉपिंग आ गई, घर बैठे ही प्रोडक्ट आ जाए, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़े। अब ये नया चेंज आया। अब जो आने वाला समय है डिजिटल का है, डिजिटल में यानी हर काम आपका एक फोन से हो जाएगा। अब हरेक को उसको ऑपरेट करना नहीं आता, यंगस्टर को आता है। हम समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार उनको हैंडल करने के लिए टीम एम्पावरमेंट करें तो जो नुकसान होने वाला था वो कम होगा। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है, अंडरकरंट क्या है, और अंडरकरंट को समझकर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। अंडरकरंट बदलता जा रहा है और उसके अनुसार मैं प्रोडक्ट को बदल रहा हूं, तब हम जाकर इस चेंजिंग वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। मैं बहनों से भी कभी डिस्कस करता हूं, पहले हमारा अप्रोच रहता था 7 डे कोर्स, अभी भी है, पर कभी कभी मैं डिस्कस करता हूं अब समय बदल गया, लोगों के पास टाइम नहीं है कि 1 घंटा दो, हर व्यक्ति भाग रहा है। अब भागते भागते उसको कैसे कोर्स कराना, अब ये नया फंडा आ गया है, वो भाग रहा है, बहन को भी भागना पड़ेगा और उसको मेडिटेशन सिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका समय उसी समय मिल रहा है। अब शायद आने वाला समय और हो जाएगा जब डिजिटल इंडिया आ जाएगा, पूरी तरह से लागू हो जाएगा, व्यक्ति आएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे को शांति चाहिए पर 2 मिनट में, अब बहन क्या करे, तो उनको पंप लगाने पड़ेंगे ऐसे शांति। फिर शाम को आएगा, कहेगा शक्ति चाहिए अब घर जा रहा हूं। तो मेथडोलॉजी, टूल, टेक्निक बदलती रहती है और वो तभी हम समझ सकते कि अंडरग्राउंड करंट क्या है, लोगों का अप्रोच मेथड क्या हो गया है, उसको समझकर हमें दोनों का यूज करना पड़ता है, नॉलेज मास्टर, विजडम मास्टर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्लो को चलने दें। जो फ्लो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। उस फ्लो को हर चीज क्या हो रही है लाइफ में, फ्लो हो रही है, हवा पानी फ्लो होता जा रहा है, उस एनर्जी को फ्लो के अनुसार हमें चलना पड़ता है। उस फ्लो में हम कभी भी रेजिस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, लक्ष्मी को दिखाया, पैसा आ रहा है जा रहा है, करेंसी आ रही है जा रही है, लक्ष्मी क्या कह रही है, लक्ष्मी क्या कह रही है, चलने दो, फ्लो होने दो। हम क्या करते हैं, हमारी घबराहट से, फियर से लक्ष्मी को सर क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। जैसे ही ये शब्द यहां गया सबकॉन्शियस में, डिपॉजिट बड़ा अच्छा होता है, कितना अच्छा लगता है आज डिपॉजिट किया, तो हमारा माइंड जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए सीएडी नंबर 1 किलर है। इंडियंस को 5 गुना कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा होती है। वर्ल्ड का फिगर लें तो इंडियंस को हार्ट की बीमारी, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारा नेचर है पकड़ने का, होल्ड करने का। कोई भी चीज को होल्ड कर लेते हैं, बढ़िया पकड़ लेते हैं और रख देते हैं। तीन तीन साल पूरी जिंदगी निकल गई पकड़ के रख लिया। क्या करना है? अगर जिंदगी को अच्छी तरह यूज करना है, आगे बढ़ना है, इस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, मेमोरी तो खाली करना पड़ेगी। अगर मेमोरी फुल हो गई तो डिसीजन क्या लेगा? अनसर्टेनिटी में, क्योंकि यहां मेमोरी ब्लॉक है, वायरस आ गया है। तो क्या करना पड़ता है? बीच बीच में मैं भी करता हूं, हर दिन देखता हूं कहां मैं रोक रहा हूं, फिर उसको जाने देता हूं, निकालता हूं। मैं देखता हूं ये काम का नहीं है स्टेटमेंट, एक घंटे बाद उसको निकाल दूं। मैक्सिमम एक दिन के बाद वो मेरे सामने नहीं आए, तब मेरा अंदर का सॉफ्टवेयर चार्ज रहता है और डिसीजन ठीक लेता है। तो क्या करना है? लेट गो करना है, अपने को प्यार करना है और लेट गो करना है। बीमारी का अर्थ ही है ILL, इल। इल का अर्थ क्या हुआ? बीमारी कहां से आई? आई लैक लव। बीमारी कहां से एंट्री मारी? कहां से जेनेटिक म्यूटेशन आया? जब मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूं, चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो म्यूटेशन आ गया। तो पहला काम रोज क्या करना है? सुबह काम पर जाने के पहले, घर से निकलने पर एक काम जरूर करना है। सुबह उठकर अपने को चार्ज करना है, पैदल करना है, एक्सरसाइज करना है और खुद को चार्ज करना है। हाँ, अपना दाहिना हाथ लें, राइट हैंड लें ऊपर और अपनी पीठ थपथपा दें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सबसे बड़ा सिकनेस का कारण है हम खुद को प्यार ही नहीं करते हैं। मेरा मोबाइल इतना है, 60,000 का है, उसको प्यार कर रहा हूं, उसको अच्छी तरह रख रहा हूं, पर खुद को, जो मैं वैल्यूएबल हूं, जो ऑपरेटर है, उसको हम भूल गए। और आजकल लोग क्या देखते हैं? अरे तेरा मोबाइल कितना वो है, अच्छा ये है, उसको रखें। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, उसको प्यार करें, पर खुद को जरूर प्यार करें। जब मैं खुद को प्यार करूंगा तो एनर्जी आएगी, और जब मैं पॉजिटिव होकर घर से निकलूंगा तब कोई भी परिस्थिति आएगी उसको हैंडल कर लूंगा। घर से निकलने के पहले मैंने, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा है, एक दूसरे को कुछ अच्छा बोलकर निकलो। मैंने सिंपल दो प्रिंसिपल देखे, जब घर से निकलो अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कुछ अच्छे शब्द बोल देती है, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना, खाना खा लेना, कितना अच्छा लगता है। वो व्यक्ति चार्ज होकर जाएगा और अच्छी तरह रिस्पॉन्स करेगा, कोई नेगेटिव भी बोलेगा उसको ठीक कर लेगा। पर घर से ही प्रॉब्लम लेकर चला तो क्या होगा? फिर जो भी आएगा, जो हैंडल, वो नहीं कर पाएगा। मैं दिल्ली में था, एक टैक्सी से आ रहा था, मंडे का दिन था और साइड में देखा काफी ट्रैफिक प्रॉब्लम था, दो बाइक वाले झगड़ रहे थे। अब क्योंकि दोनों साइड में चले गए, मेन रोड ये है, अब वो एक पहला आना चाह रहा था, दूसरा रोक दे रहा था, पहले मैं जाऊंगा। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ कर मैं देख रहे थे, मंडे का दिन है, काम पर जा रहे हैं, आधी एनर्जी वहां खत्म कर दी। अब एक रुक जाता तो दूसरा आगे जाकर फिर दूसरा भी जा सकता था, पर क्यों हो रहा था ये, जबकि दोनों जानते हैं एक ही जा सकता है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कहां से हो रहा है? कहीं ना कहीं लो एनर्जी थी, और अगर वो घर से ठीक निकलता तो वो कहता ठीक है मैं आगे जाता हूं। तो एनर्जी क्रिएट करना हमारे हाथ में है, इसीलिए रोज सुबह उठकर अपने को हाँ खड़े हो जाए, चलो प्यार करते हैं और लेट गो करेंगे। जो भी नेगेटिव फाइल्स अंदर हैं, मेरा टाइम केवल 5 मिनट और है, जो भी नेगेटिव फाइल्स हैं उसको जाने देंगे, यहां नहीं रखेंगे, उसको निकालेंगे। जय हो। चलिए वाइंड अप करते हैं। बहुत डिटेल में न जाकर हमने देखा अनसर्टेनिटी एक पार्ट है, रोज कुछ ना कुछ होगा और रोज हमें उसको ठीक करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन समझना कुछ ठीक नहीं किया। प्रॉब्लम आना उसी को प्रॉब्लम किसको आएगा, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जितना अच्छा खिलाड़ी होगा उसका प्रॉब्लम और बड़ा होगा, तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए हमारा डिसीजन पावर अच्छा हो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। ऑक्सीजन कब कम हो जाता है, जब हमारे में डर आता है, जब हमारे में गुस्सा आता है, जब हमारे में पैनिक आता है। किसी भी सिचुएशन में पहली बात है पैनिक क्रिएट ना करें। उस समय सोचें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, इसका सलूशन क्या है। प्रॉब्लम है तो सलूशन भी है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अंदर ही है, उसको बाहर लाना पड़ता है। और वो तब बाहर होता है जब हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटैचमेंट की। कुछ समय हम रोज या वीक में एक बार 10 मिनट खुद को दें, 15 मिनट दें, आधा घंटा दें, और उस आधे घंटे में संडे को कुछ नहीं परसीव करें। आंखें बंद नहीं करना है, कान बंद नहीं करना है, पर मैं क्या कर रहा हूं उस आधे घंटे में, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पर मैं उसको अंदर नहीं ले रहा हूं। बच्चे कुछ कर रहे हैं, करने दो, उस आधे घंटे में मेरे को कुछ बोलना नहीं है। तो तब ये अंदर का कंप्यूटर अपने आप शुरू हो जाएगा। कभी कभी आप प्रैक्टिस करना, जो भाई लोग हैं शेविंग करते करते बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, नाचते समय आते हैं। पहले आपने देखा होगा कई लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं जैसे ही नहाना शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय 5 सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, और जैसे ही वो 5 सेंसर काम नहीं कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। और वो जब शुरू करता है तो पूरा गाइडलाइन देता है आज के दिन तुझे क्या करना है। पूरी प्लानिंग पहले यहां होती है फिर बाहर होती है, पूरा कंस्ट्रक्शन यहां होता है फिर बाहर होता है। तो उन आधे घंटे में कुछ जज नहीं करें, अपना डिसीजन लिखते जाएं। धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो कोई अनसर्टेनिटी आई, प्रॉब्लम आया, मेरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम कम करेगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरी बुद्धि मेरे को कहेगी हैंडल कर। मन पैनिक ही नहीं करेगा, सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है हमारा माइंड, मन। उसको उसी समय रोकना है, कंट्रोल में लाना है। मैं इस समय यहां पर ठीक हूं, ऑल इज वेल, हॉस्पिटल जा रहा हूं, ठीक है। किसी को पैनिक ही में फोन नहीं कर दे, केवल घर वालों को पता हो, बहुत ज्यादा लोगों को भी ना बताएं, पहले उसको ठीक करें। पैनिक ही में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं वो वर्ड्स हमारे अंदर आ जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहले डिसीजन लेना है और फिर उसको ठीक से हैंडल करके लोगों को बताना है। मेरे को याद है, मैं लास्ट एग्जांपल देके खत्म करता हूं। एक भाई मेरे पास आया था और उसको थोड़ा ECG चेंजेस थे, इन्फार्क्ट था अर्ली, पर इको ठीक था। हमने उसको रिफर्ट कर दिया हायर सेंटर पर। हायर सेंटर पर जो कार्डियोलॉजिस्ट था उसने ईसीजी देखकर एकदम धड़ाधड़ उसके रिलेटिव्स को फोन कर दिया। सब में पैनिक ही आ गया। फिर बाद में देखा कि इको तो बहुत ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, पर वो सब आ गए उसको देखने और उस पैनिकी स्टेज में हर एक को प्रॉब्लम आया। तो पहले देखें, इवेल्युएट करें और फिर डिसीशन लेकर हैंडल करके फिर बताएं, तो वो प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमेशा जब अपन नीचे जाएं अपने को कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हाँ बोलें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे में असीम शक्ति है, असीम शक्ति है। जब मौका मिले खुद को कहें, शब्द भी एनर्जी देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। अपने से बात करना सीख लिया, मैं डाउन हो रहा हूँ, बीमारी है, जा रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो बीमारी भी ठीक होना शुरू करती है। ये कई एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर, मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा लिव लाइफ लाइट में क्या लेटेस्ट रिसर्च आए हैं, डॉक्टर कह रहे हैं और कैसे हमें ठीक करना है। जय गणेश। खत्म करते हैं तीन। थैंक यू वेरी मच। या गीता बहन आ गई।